الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ہمارے پاس قرآن کی کلاس ہوتی ہے جس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرفہ القرآن کی جلد نمبر 3 میں سے. ابھی جو آیت پڑھی گئی وہ آیت نمبر 68 ہے، اور پورا جو مجمع آیات ہے وہ 68 سے لے کر کے 73 تک ہے. تو اس کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں. معارف و مسائل بھی جمعے کی مجلس کے اندر ہم نے شروع کر دیے تھے، تو اس کا تھوڑا سا ریکیپ کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ ان کو اوائڈ کریں، ان سے الگ ہو جائیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ وہ اس کام کو چھوڑ کر کے کسی اور بات کے اندر لگ جائیں، ان باتوں کو چھوڑ کے کسی اور بات میں لگ جائیں. اور اگر وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے شیطان آپ کو، فَلَا تَقْعُدْ، تو مت بیٹھیے، بعد ذکر، جب آپ کو یاد آ جائے. اگر پھر شیطان بھلا دے تو بھائی دوسری طرف سے یاد دہانی کا بھی تو انتظام ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یاد دہانی کا انتظام حرکت میں آ جائے، وہ آپ کو یاد دلا دے، یعنی فرشتہ یاد دلا دے اللہ کے حکم سے، یا کوئی فرشتہ نما انسان یاد دلا دے، ٹھیک ہے؟ جو نبیوں والا کام کرتے ہیں، یاد دہانی کرنے والا کام، وہ بھی تو فرشتے نما انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتے نہیں ہوتے لیکن انہی کے جیسا کام کرنے والے انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ آپ کو یاد دلا دیں تو پھر آپ وہاں سے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ مزید مت بیٹھیں، مع القوم الظالمین، گناہگاروں کے لوگوں، گناہگاروں کے ساتھ مزید آپ مت بیٹھیں، اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے تحت جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ خوضو کا مطلب ہی جو ہے نا وہ کسی چیز کے اندر گھس جانا ہے، داخل ہو جانا ہے. جیسے کہ پانی کے حوض کے اندر، پانی کے پول کے اندر کوئی انسان اتر جاتا ہے تو پورا کا پورا پانی کے اندر ہی گھر جاتا ہے نا، پانی میں ہی گھر جاتا ہے. تو اسی طرح خوض کا بھی یہی مطلب ہے. تو ایسی کسی مجلس میں ہونا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ گھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اب آپ ان لوگوں کے انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں، ان کے اثر کے اندر ہوتے ہیں. اب دیکھیں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ایک ہارٹ جو ہوتا ہے انسان کا، ایک دل جو ہوتا ہے، وہ اثر کرتا ہے دوسرے دلوں کے اوپر، کیونکہ ہر ہارٹ کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سائنس بھی یہ بات پروف کرتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کا ہمیں بار بار تلقین فرمائی کہ اچھی صحبت، اچھی صحبت، بری صحبت کا اثر ہوتا ہے، بری صحبت سے بچو. تو ایک دل کا دوسرے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو جب آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر گناہ گار موجود ہوں، ٹھیک ہے، تو اتنے سارے دل، تو ان کا کتنا اثر ہوتا ہوگا، رائٹ؟ ان کا کتنا اثر ہوتا ہوگا؟ جب ایک دل کا اتنا اثر ہوتا ہے تو کئی دلوں کا مل کر کے کتنا اثر ہوتا ہوگا. تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کسی تالاب کے اندر اترے ہوئے ہیں، پانی کے اندر اترے ہوئے ہیں. اب آپ پانی سے، یعنی پانی کے اندر ہوتے ہوئے آپ پانی سے بچ نہیں سکتے نا، نہیں، اس کے لیے تو آپ کو پانی سے باہر نکلنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہی جو ہے وہ بری صحبت کی مثال ہے. اس سے زیادہ بہتر مثال اور کون دے سکتا ہے؟ ہمارا پروردگار ہی دیتا ہے. लफ्ज ही ऐसा इस्तेमाल किया जिससे कि बात 100% समझ में आ जाए। फिर भी कोई समझ में ना दे तो फिर पिटाई होनी चाहिए उसकी, इसी वजह से हमारी पिटाई होती है क्योंकि हम समझ के नहीं देते। हमारे परवरदिगार ने तो समझाने की हुज्जत तमाम कर दी, सारी बातें जो है वो अल्लाह ताला ने खोल खोल के बयान फरमा दी, फिर भी हम नहीं समझते। फिर वही होता है जो कि हो रहा है हमारे साथ। बहरहाल खौफ का जो लफ्ज है उसके ये मानी हमने पढ़ लिए थे जुमे की मजलिस के अंदर ही, डिस्कस कर लिए थे आज थोड़ा सा और उसके ऊपर बात हो गई। तो 370 के ऊपर ये शुरू हुई थी, मारफ मसाइल हुए थे। फिर 371 के ऊपर एक और जुमला बड़ा अहम था कि तीसरे पैराग्राफ के अंदर के दूसरी एक आयत में भी यही मजमून इरशाद हुआ है और इसके आखिर में ये फरमाया है कि अगर तुम वहां बैठे रहे तो तुम भी इन्हीं में से हो, ठीक है, तुम उन्हीं में से हो अगर तुम उनके दरमियान बैठे रहे, ठीक है। तो भाई जो जैसा जो यानी जैसी सोहबत होती है वो वैसा ही हो जाता है, बेशक पहले अगर नहीं भी था वैसा तो उस सोहबत के अंदर रहने की वजह से वो वैसे ही हो जाता है। और जाहिर है जब वो वैसे ही हो जाएगा तो फिर उसका अंजाम भी वैसे ही होगा जैसा कि वो है या जैसा कि वो हो गया है, ठीक है। तो इसी वजह से फिर हमें सोहबत के बारे में बहुत ज्यादा जो है ना वो मोहतात रहने की जरूरत है, और जाहिर है अपनी भी और अपनी औलादों की, ठीक है। तो अब हम जो है वो आजकल के दौर के अंदर फिजिकल सोहबत तो पहले होती थी, अब फिजिकल सोहबत भी होती है लेकिन साथ साथ एक नई मुसीबत आ गई है इस दुनिया के अंदर जो पहले नहीं होती थी। वो नई मुसीबत क्या कहलाती है? वो ऑनलाइन सोहबत कहलाती है, वर्चुअल सोहबत कहलाती है, ठीक है। तो अब व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो लोग मौजूद हैं तो अब उन्होंने तो उस ग्रुप पे वही भेजना है ना जिस किस्म के वो लोग होंगे, जिस किस्म की उनकी सोच होगी, ठीक है। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं मुख्तलिफ वजूहात से। अच्छा भाई ये फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, तो अब फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप जो है तो उसके अंदर क्या सारे आपके फैमिली वाले जो है वो नेक लोग हैं, गुनाहों से बचने वाले लोग हैं, गुनाहों को गुनाह समझने वाले लोग हैं क्या आपके फैमिली के अंदर, जो गुनाह को गुनाह मानते हैं? हैं? आजकल तो ये है ना कि गुनाह करना खाली मसला नहीं है बल्कि गुनाह को गुनाह मानते ही नहीं है, यानी इनकार कर देते हैं कि ये गुनाह है ही नहीं। तो इससे तो इंसान का ईमान ही खतरे में पड़ जाता है कि अगर वो गुनाह को गुनाह मानने से ही इनकार कर दे तो आप किन लोगों की सोहबत में हैं? फैमिली वालों की सोहबत में है, तो फैमिली वाले अगर ईमान वाले ही नहीं है तो फिर ठीक है। तो उनकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हुए होते हैं और जो है वो और अपने स्कूल कॉलेज के जो दोस्त थे सहेलियां थी तो उनके ग्रुप ज्वाइन किए, भाई एलमनाई की ग्रुप सही है। एलमनाई कहते हैं जो ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन होती है कॉलेज की यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो उसके ग्रुप ज्वाइन किए हुए। तो अब उसके ऊपर हमारे दोस्त बता यार हमें हम भी तो इसी किस्म के बैकग्राउंड के ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोड़ दिए, वरना पहले हम बहुत एक्टिव होते थे इन सब ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, फिजिकल सोहबत में भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता था ये आजिज। और इस तरह की जो वो जमाना, वैसे व्हाट्सएप का जमाना नहीं था लेकिन जो याहू ग्रुप्स होते थे, गूगल भी उस जमाने में नहीं आया था लेकिन याहू के ग्रुप्स होते थे, यानी ईमेल बेस्ड ग्रुप्स होते थे वो, तो बहुत उसके ऊपर भी एक्टिव होते थे। तो देखा है वो वक्त भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों से ताल्लुक हो गया, बात उन्होंने समझा दी, हमने मान ली, उसके बाद छोड़ दिया उनको, छोड़ दिया उन ग्रुप्स को, छोड़ दी उन सोहबतों को, छोड़ दी वो दोस्तियां, ठीक है। तो ये नहीं है हम पैदाइशी जो है वो कोई मौलवी पैदा हुए थे कि भाई आप तो मौलवी पैदा हुए थे इस वजह से आपने आप आपको क्या पता है क्या होता है। तो छोड़ना होता है ना भाई, अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मरो जाकर के उन्हीं के साथ, अंजाम भी तुम्हारा उन्हीं के साथ ही होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि हमने बड़ों की बात मानी है तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं कहते हमने बहुत बड़ा जो है वो तीर मार लिया और हम जो है वो पक्के जन्नती हो गए, हमें कोई सर्टिफिकेट मिल गया जन्नत का, हरगिज ये नहीं कह रहे। ये तो मरने के वक्त पता चलेगा कि ईमान पे मौत आ रही है कि नहीं आ रही है। कौन दावा कर सकता है कि अब मैं जन्नती हो गया? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम से कम अपने बुजुर्गों की बात तो मानी ना, वो भी अल्लाह की तौफीक से ही, वो भी क्रेडिट हम अल्लाह को ही देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी बलबूते पे नहीं बात मानी बल्कि अल्लाह ने मनवा दी, ठीक है। लेकिन बात समझाने के लिए, किसी और को बोलने के लिए तो ये बताना पड़ेगा ना कि भाई छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, औरों ने भी छोड़ा है, और ये सिर्फ नहीं कि मर्दों ने छोड़ा है बल्कि औरतों ने भी छोड़ा है इस किस्म की सोहबतें। तो अब ये बहाने बनाना कि नहीं मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं छोड़ सकती, तो ये सिर्फ बहाने होते हैं असल में, ठीक है भाई। अगर नहीं छोड़ सकती तो फिर आप सीखें किस तरह से छोड़ा जाता है, अगर आपको नहीं आता छोड़ना ऐसी सोहबतों को। तो एलुमनाई ग्रुप्स बनाए हुए हैं, फैमिली ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो पोलिटिकल पार्टी के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पार्टियां ज्वाइन करी हुई हैं और उन पार्टियों के जो है वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की चीजें वो लोग शेयर करते हैं, दीन को मजाक बनाने वाली चीजें कि अपना दीन। अच्छा, आज आजकल जो है वो एक तो एथियस किस्म के लोग होते हैं पक्के, पाकिस्तान के अंदर कितने एथियस कम है कोई, दीन का इनकार करने वाले बहुत हैं इस किस्म के, वो तो सिरे से दीन का इनकार कर देते हैं। और जो है वो उसके अलावा दूसरे लेवल के भी लोग हैं जो दीन का बदल ओवरऑल इनकार नहीं कर रहे, लेकिन दीन की जो पक्की ठक्की शरीयत की बातें हैं उनका इनकार कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी तो दीन का इनकार ही है, वो भी तो दीन का इस्तेहजा ही है, जो कि अपनी तरफ से एक नया दीन को समझते हैं कि ये दीन है, और जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से जो दीन हमें मिला है उसको उसका इनकार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को जो है फिर अपने आप को उनसे अलग करना पड़ता है, ठीक है। हाउ टू डिस्टेंस आवर सेल्फ फ्रॉम इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। व्हाट्सएप ग्रुप देखें, फैमिली मेंबर्स के साथ जो अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म फरमाया है ना, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शामिल रहें, और उनके जो है ना वो यानी इस किस्म की जो मजालिस हैं आप उनका भी हिस्सा रहें। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने अपनी तरफ से बना लिया है, ये हमने अपनी तरफ से बना लिया है कि जब तक हम उनके साथ चिल नहीं करेंगे, जब तक हम उनके साथ जो है वो हैंग आउट नहीं करेंगे, जब तक हम उनके साथ हम पार्टियां नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि फैमिली टूट गई, इसका मतलब ये है कि हमने फैमिली को छोड़ दिया। नहीं, ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने फैमिली को छोड़ दिया, ठीक है। तो फैमिली के साथ जो अल्लाह ताला ने उसूल बताए हैं उनके मुताबिक फैमिली के साथ रहना है। अब अगर वो दीन में आपके साथ हैं तो फिर आपने आगे बढ़ना है, ज्यादा प्यार मोहब्बत का मामला रखना है, ज्यादा जो है उनके साथ मेलजोल करना है। लेकिन अगर वो दीन में साथ नहीं है तो फिर एक वाजिबी ताल्लुक रखना है उनके साथ। वाजिबी ताल्लुक का मतलब होता है कि जो वाजिब है उतना ताल्लुक रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना, ठीक है। तो अब ये एक क्लास में तो आपको सारा नहीं बताया जा सकता, लेकिन ऐसा ही करना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोने ऐसा ही किया कि वाजिबी ताल्लुक रखा फैमिली के साथ और आज भी है, चाहे वो जैसे भी लोग हैं लेकिन ब्लड रिलेशनशिप है, उनके साथ ताल्लुक है। कोई कोई कट ऑफ तो नहीं कर दिया कि नहीं अब तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा, नहीं मिल लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं मिलना है कि जिसमें के यानी यू बिकम पार्ट ऑफ वॉट एवर दे आर डूइंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं होता, आई एम श्योर कि आप लोग भी ऐसा करती होंगी, लेकिन जिनको के नहीं समझ में होती है उनको समझाने के लिए सारी बातें की जा रही है कि भाई इट्स नॉट ओके, बिल्कुल नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं हो सकती, ठीक है। अभी किसी ने पिछले दिनों आकर के बात भी करी थी कि ये है भाई कजन्स के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप, ठीक है, आप तो व्हाट्सएप का नाम की बात नहीं करें लेकिन बाकी लोग तो स्पेशली न्यूअर जनरेशन का तो दुनिया ही व्हाट्सएप के ऊपर है ना, दुनिया ही जो है वो सोशल मीडिया बेस्ड है। तो हम तो उनके लेवल की बात कर रहे हैं कि भाई आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं तो उसके ऊपर वो मुख्तलिफ उल्टी सीधी चीजें कदम जो है उनको भेजते रहते हैं। तो हम उनने उनको फिर यही समझाया कि बेटा आपको ये बात पता है ना कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का काम शुरू किया था, ठीक है, तो सबसे पहले उनकी मुखालफत किन्होंने करी थी, तो इतना भी उनको पता था कि सबसे पहले जो मुखालफत करी थी वो तो सगे फैमिली मेंबर्स ने करी थी, ठीक है, सगे फैमिली मेंबर्स, सबसे करीबी चचा ने करी थी और कजन्स ने करी थी, ठीक है, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या नबी अलैहिस्सलाम की रिलेशनशिप उनके साथ वैसे ही रहे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम उनको बुलाते रहे, आप उनको तब्दील करते रहे, ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से जो दुश्मनी और मुखालफत का मामला हो रहा, तो फिर उनके साथ फिर आगे जोड़ तो नहीं चलता रहा ना, बल्कि जिन्होंने आप को कबूल किया, यानी आप के मैसेज को कबूल किया, चाहे वो दूर के लोग थे, नॉन फैमिली मेंबर्स थे, बनू हाशिम के लोग नहीं थे, राइट, तो उनके साथ फिर एक नई फैमिली बन गई, एक नई फैमिली बन गई। ठीक है, तो हम इसके अलावा किसी और दीन पे अमल करना चाहते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के दीन था? ऐसा नहीं हो सकता। वो दीन तो वही है जो नबी अलैहिस्सलाम का दीन था। ठीक है, तो हमको उसी मेथड को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसी उसी तरीके को ही सीखना पड़ेगा ताकि हम भी उसके ऊपर अमल कर सकें। फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो फिर रिश्तेदार आ जाते हैं करीब। लेकिन क्राइटेरिया जो है, जो स्टैंडर्ड है हमारे लिए मोहब्बत का, ठीक है, वो तो दीन ही है, वो फैमिली टर्म्स नहीं। स्टैंडर्ड मोहब्बत का वो दीन है बस, उसके अलावा कोई दूसरा स्टैंडर्ड नहीं है किसी के साथ भी। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने लिखा क्या, शदीद डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं इंसान अगर नहीं छोड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप्स, इवन आप अपना मैं का ही हो जाए। जी, व्हाट्सएप ग्रुप तो डिस्ट्रैक्शन है ना, उसके ऊपर हर बंदा अपनी तरफ से कुछ चीजें भेज रहा होता है। क्या इसको भी एक फितने की शक्ल कहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स? जी, बहुत बड़ा फितना है ये, व्हाट्सएप ग्रुप्स का शिकार का हिस्सा रहना, ये बहुत बड़ा फितना है। और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, बल्कि दूसरे भी पता नहीं क्या क्या होते हैं, और किसी का तो पता नहीं है। तो हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, ठीक है भाई, हम भी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सारा का सारा काम कर रहे हैं ना, ठीक है, सारी क्लासेस जो हैं, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हत्ता के तरावी तरावी के लिए अब जो है वो प्लानिंग चल रही है, वो भी व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर ही हो रही है। ठीक है, लेकिन उन ग्रुप्स के ऊपर किसी की मजाल नहीं है कि कोई अपनी तरफ से कोई उल्टी चीज भेज सके। पहले बहुत मसला होता था जब व्हाट्सएप वालों ने इजाजत दी हुई थी कि हर बंदा जो है ना जो चाहे भेज सकता है, बहुत मसला होता था, हम बार बार रिमाइंडर्स भेजते थे, लेकिन फिर कोई भेज देता था उठा करके उल्टी चीज। यही दीन दीन एसेंशियल्स फॉर वुमेन का ग्रुप हो या दीन एसेंशियल्स फॉर मेन का ग्रुप हो, लेकिन अल्लाह भला करे, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए, बड़ा नेक काम किया उन्होंने, बजायर हमारे लिए तो बड़ा नेक काम हुआ, बाकी जो भी इनके मकसद होंगे इसके, लेकिन हमें तो बड़ा फायदा हुआ जब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी दे दी कि अब जो है ना एक ऑप्शन ये है कि आप एक बंदे को एडमिन बनाएं, सिर्फ वही भेज सकता है और कोई नहीं भेज सकता। इतना बड़ा दर्द सर खत्म हो गया उसकी वजह से कि अब जो है ना वो बस हमें क्लास की नोटिफिकेशन भेजनी होती है, हम भेजते हैं, किसी और को इजाजत ही नहीं है कि वो भेज सके। ठीक है, लेकिन जहां पे ऐसा नहीं होता तो वहां पर तो आप बंदों को रोक ही नहीं सकते। ठीक है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है ना उठा करके उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, चाहे वो गाना हो, चाहे वो कोई बेहूदा किस्म की वीडियो हो, चाहे बेपर्दगी वाली कोई चीज हो, चाहे कुछ हो कुछ हो। तो ये तो बहुत बड़ा करता है ना। अच्छा, नेकी की चीजें आप भेजेंगे, वो नहीं पड़ेगा कोई, पड़ेगा ही नहीं कोई, लेकिन क्यों? इसलिए कि शैतान की मान करके जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो फिर उसका लाजमी असर ये होता है कि उसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नेकी की चीज आ रही है ना, उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो बुराई की चीज आ रही है उसको जरूर पढ़ेंगे, बुराई की चीज आ रही है उसको जरूर देखेंगे। भाई क्यों, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं तो आप हर किस्म की चीजें पढ़ें? मैं हम ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ें, मैं कह रहा हूं समझने के लिए कि जो अच्छी बातें हैं आप वो भी करें ना, और जो बुरी बातें हैं वो आप कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अच्छी बातों को पढ़ेंगे, अच्छी बातों को जो है वो सोचेंगे, अच्छी बातों को आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे, बस जो है वो जो हराम चीज है उनको। भाई इसकी वजह यही होती है कि आप शैतान के इन्फ्लुएंस में इतने ज्यादा होते हैं कि वो आपसे खाली बुरे काम करवा रहा होता है, अच्छा काम कोई करवा ही करने ही नहीं देता। बहरहाल, तो ये जो ग्रुप्स के अंदर शामिल होना है ना, तो फिर ये ना तो खालिसतन इंसान अपने अपनी यानी इल्म के लिए दाखिल हो, और उसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इल्मी की बात होनी चाहिए, नेकी की बात होनी चाहिए। और अगर जो है वो आप किसी जगह दावत तो तबलीग की नियत से जा भी रहे हैं ना, तो वो भी हमारे दीन का तरीका ही है कि आप दावत व तबलीग की मेहनत जो है वो अपने बलबूते पे शुरू नहीं कर देते हैं। कि चलो जी मैं लोगों को नेकी की तरफ बुलाऊंगा, अब जो है ना मैं जा रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन रहा हूँ, ठीक है। ऐसे दावत का काम नहीं किया जाता, बल्कि दावत का काम जो है वो बड़ों से सीख करके और बड़ों की इजाजत से, बल्कि सबसे बेहतर ये है कि बड़ों के हुक्म से किया जाए। अगर वो हुक्म दे रहे हैं ना कि आप फलानी मजलिस में जा करके दावत का काम करें, तब वो काम किया जाए, वरना ना किया जाए। अपने आप को कमजोर समझा जाए कि मैं अगर किसी ऐसी मजलिस में गया या मैं ऐसी किसी ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनी, तो मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगी। अपने आप को हमेशा कमजोर समझना चाहिए, ठीक है। जब बड़े हुक्म दे रहे हैं कि आप जाके करें, तो अब जब हुक्म के ऊपर काम किया जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है और अल्लाह ताला की हिफाजत भी शामिल हाल होती है। अपने बलबूते पे कि नहीं मैं अब इतना काबिल हो गई हूँ कि अब जो है मैं जा करके दावत का काम करना शुरू कर दूंगी, तो फिर इसमें फिर अल्लाह ताला की हिफाजत और मदद शामिल नहीं होती है। बहरहाल आगे हम पढ़ रहे थे कि ये आखिर आयत में जो ये इरशाद, ये पेज नंबर 372 है, कि आखिरी आयत में जो ये इरशाद है कि याद आ जाने के बाद जालिम कौम के साथ ना बैठो, इससे इमाम जस्सास रहमतुल्लाह ने मसला अखज किया है कि ऐसे जालिम बेदीन और दरीदा दहन लोगों की मजलिस में शिरकत करना मुतलकन गुनाह है, ख्वा वो उस वक्त किसी नाजायज गुफ्तगू में मशगूल हो या ना हो, ठीक है, एट द मोमेंट वो मशगूल हो या ना हो, लेकिन फिर भी उनकी सोबत में बैठना ये मुतलकन गुनाह है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसी बेहूदा गुफ्तगू शुरू करते हुए देर क्या लगती है। वजह इस्तेदाल इसकी यह है कि इसमें मुतलकन जालिमों के साथ बैठने को मना फरमाया गया है, इसमें यह शर्त नहीं है कि वो उस वक्त भी जुल्म करने में मशगूल हो। मिसाल के तौर पर एक भाई बताने लगे कि जी वो फैमिली की एक जो है ना वो शादी के बाद जो दावतें होती हैं ना उसमें गए, ठीक है। एक तो शादी के बारे में तो बात हो चुकी है, हमने बाकायदा क्लास के ग्रुप के ऊपर भी वो मैसेज फॉरवर्ड किया था, उम्मीद है आप सबने पढ़ा होगा कि जब करीबी रिश्तेदारों में शादी हो तो वहां पर चले जाएं, लेकिन अगर वहां पे मौसीकी का माहौल हो, पहले तो अपने पर्दे की हिफाजत करें, और दूसरा ये कि अगर मौसीकी का माहौल हो तो फिर वहां से निकल जाएं, तोहफा दें, मुबारकबाद दें, निकल जाएं वहां से, ठीक है। तो ये तो बात हो चुकी है शादी की, खुद शादी के बारे में, लेकिन उसके अलावा जो पार्टीज वगैरह होती हैं तो उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, ये जो पीछे भी बात हुई थी ना, सवाल हुआ था कि भाई फैमिली मेंबर्स के साथ, तो उसमें एक उसूल को याद रखें कि आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, ठीक है, कि खुदा भी राजी रहे और जो है ना वो शैतान भी राजी रहे, खुदा की तरफ बुलाने वाले लोग भी जो है वो राजी रहें और शैतान का काम करने वाले लोग भी राजी रहें, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। दोनों को राजी नहीं रखते, या तो एक तरफ राजी रखेंगे तो दूसरा नाराज होगा, दूसरी तरफ राजी रखेंगे तो पहला नाराज होगा, ये उसूल की बात है, ये तब्दील नहीं होने वाला, दोनों राजी नहीं हो सकते कभी भी। तो ये जो शादी के बाद की दावतें होती हैं, तो भाई वही है ना, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, भाई ये दावतें इतनी अहम नहीं होती हैं कि इनके अंदर भी आपने अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज करते हुए शामिल होना है। तो अब वो एक दोस्त बताने लगे कि जी हम जो है वो शादी की दावत में गए, तो पहले तो सब ठीक था, फिर उसके बाद जो है ना वो एक करीबी रिश्तेदार तशरीफ ले आए, वो करीबी रिश्तेदार जो है वो उनकी आवाज भी बड़ी अच्छी है और अब जो है वो बाकायदा गाने बजाने का काम करते हैं। तो जैसे ही वो आए तो अच्छा भाई तुम जब हो तो फिर, राइट, जी बिल्कुल, मैं जब आ गया हूं तो अब जो है वो मैं अपना काम क्यों ना करूं। उन्होंने जा करके जो है गिटार संभाला और गिटार के ऊपर जो है वो शुरू हो गए अपने गाने गाने और गिटार बजाने, और उसके बाद तो पूरा मजमा ही जो है वो वहां पर सभी जो है वो गाना बजाना नाचना सब शुरू हो गया, ठीक है। तो वही बात है ना कि देर कितनी लगती है, तो खुसूसन म्यूजिक तो एक ऐसी चीज है जिसको कि आज जो है वो हलाल कर लिया गया है, बिल्कुल करार दे दिया गया है, बल्कि ज्यादा पॉप म्यूजिक जो है वो अगर किसी को बुरी लग रही हो तो कहते हैं अच्छा जी सूफी म्यूजिक, राइट, कव्वाली की म्यूजिक हो या कोई सूफी म्यूजिक हो या कोई और इस किस्म की, यानी भाई कौन सी म्यूजिक हलाल होती है? कोई म्यूजिक हलाल नहीं होती, कोई सूफी म्यूजिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो और जो है वो ज्यादा बड़ा दीन के साथ मजाक है जिसको कि सूफी म्यूजिक का नाम दिया गया। तो ऐसा शख्स जो होता है उसको फिर बेहुदा काम करने या बेहुदा गुफ्तगू करने में क्या देर लगती है। कुरान मजीद की एक दूसरी आयत में भी यही मजमून वाजह तौर पर बयान हुआ है, फरमाया है कि वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। अच्छा एक और भी बात चलें कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी साथियों के साथ हुई थी कि ये जो लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं ना, आपको हर चीज में बुलाने की जो कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके पुराने दोस्त हों चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, वो हर वक्त आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप भी आए आप भी आए आप भी आए आप भी आए, ठीक है, हालांकि आपको वो देख रहे हैं कि आप दीनदार बन चुके हैं, ठीक है, आप दीनदार बन चुके हैं, आपने थोड़ी थोड़ी सी दाढ़ी उगा ली है या आपने जो है वो कुछ जो है वो बुरका बुरका पहनना शुरू कर दिया है, तो अब ये है ना कि आप दीनदार बन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आपके पीछे पड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं। तो क्या किया जाए? तो उसका हमने एक जवाब दिया था जो कि शायद किसी को समझ में ना आए, लेकिन कोशिश करेंगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है, इतना मुश्किल काम, इतना मुश्किल जवाब नहीं है। वो ये है कि ये जो हम दीनदार बने होते हैं ना, ठीक है, ये अभी हम पूरे दीनदार बने नहीं होते हैं, हम खाली जाहिरी तौर पर कुछ दीनदार बने होते हैं, ठीक है, जैसे दाढ़ी उगा ली तो हम समझते हैं हम पूरे दीनदार बन गए, लेकिन नहीं, ये अभी आप सिर्फ जाहिरी तौर पर दीनदार बने। बुर्का पहन लिया तो औरतें समझती हैं हम पूरी दीनदार बन गई हैं, नहीं, ये आप सिर्फ जाहिरी तौर पर दीनदार बनी, और अगर बुर्के से कम है तो वो और भी कम जाहिरी तौर पर दीनदार बनी, अगर बुर्का भी अभी नहीं शुरू किया तो फिर तो और भी कम जाहिरी दीनदार बनी, बुर्का पहन लिया तो भी सिर्फ जाहिरी दीनदार बनी, ठीक है। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है, यानी जाहिरी दीनदार बन जाने की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप अभी ट्रांजिट लोकेशन पर हैं, जैसे आपको सऊदी अरब से अगर पाकिस्तान जाना हो इंडिया जाना हो तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती ना अक्सर, ठीक है, तो आपको एक ट्रांजिट लोकेशन पे जाना पड़ता है, कभी जो है वो आप दुबई जाते हैं, फिर दुबई से अगली फ्लाइट लेकर के आप जो है वो लाहौर जाते हैं, ठीक है, बहरीन जाते हैं, ये ट्रांजिट लोकेशन होती है। तो हम जो है ना ये जाहिरी दीनदार बन करके अभी सिर्फ ट्रांजिट लोकेशन पे पहुंचे हैं, अभी तक अभी हम मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये जब तक हम ट्रांजिट लोकेशन पे रहते हैं ना, लोग उस वक्त तक आपके पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, तो लोग उस वक्त तक आपके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरीके से दीनदार बन जाते हैं ना, तो उसके बाद ना फिर वो आपका आपका जान छोड़ देते हैं, फिर वो आपकी जान छोड़ देते हैं, वो आपको फिर गॉन केस समझना शुरू कर देते हैं ना, ये तो अब हो गया बिल्कुल, ये ना ये तो हमारे हाथों से निकल गया, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया, ये वो लोग समझ रहे हैं ना, ठीक है, अल्लाह और उसका रसूल ये नहीं समझ रहे हैं कि आप पागल हो गए हैं, आप हाथों से निकल गए, ना दीन वाले ये समझ रहे हैं आप, लेकिन वो लोग आपको दीवाना समझना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ दीन, ठीक है। तो उस वक्त फिर आपकी वो पीछा छोड़ते हैं, उस वक्त आपकी जान छोड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं ना टू मच मौलवी, ठीक है, लेकिन ये टू मच मौलवी जो है ना, ये कौन बुरा समझता है टू मच मौलवी को, जो कि या तो दुनियादार होता है या वो खुद जो है ना वो अभी ट्रांजिशन स्टेज में होता है, रास्ते में होता है अभी वो, तो उसको ये टू मच मौलवी वाली बात बहुत बुरी लग रही होती है, ठीक है, लेकिन हमारा गोल ही ये है कि हम टू मच दीनदार बन जाएं, टू मच दीनदार उनकी डेफिनेशन के मुताबिक, वरना दीन की डेफिनेशन में वो टू मच दीनदार नहीं होता, वो तो असल दीन है कि आप जाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर दीनदार बन जाएं, आपको नेकियों से मोहब्बत हो जाए और आपको गुनाहों से नफरत हो जाए, ये तो दीन का असल है, ये तो दीन का गोल है, यही तो दीन है कि नेकियों से मोहब्बत और गुनाहों से कराहियत, ये हमारा गोल है, लेकिन जब तक आप ट्रांजिशन स्टेज में रहते हैं ना, उस वक्त तक आपको नेकियों से ना मोहब्बत होती है, बस वो देखा देखी कर रहे होते हैं, ठीक
ठीक है, जो आसान लगी बस वो कर ली, और जो कोई तलब नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती, ठीक है, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया, उसी तरीके से बुरके वालियों को देख के आंटी ने बुरका पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन असल जो दीन है वो तो मोहब्बत और नफरत वाला दीन है, ठीक है, उसमें कोई थोड़ी आप पहुंचे, गुनाहों से नफरत, लोगों से नफरत नहीं, गुनाहों से नफरत, गुनाहगारों से नफरत नहीं, गुनाहों से नफरत, ये है असल, ठीक है। लेकिन जब तक हम उस लेवल दबल तक नहीं पहुंचे होते हैं ना, तो उस वक्त तक हम अभी रास्ते के राही हैं, और रास्ते का राही जो होते हैं ना उस पे तो फिर आपको पता है ना रास्ते का राही क्या होता है, उसको मुसाफिर कहते हैं, मुसाफिर कहते हैं ना, ठीक है। तो मुसाफिर जो होते हैं ना वो तो जो राहजन होते हैं, जिनको डाकू कहते हैं, तो वो उनसे महफूज तो नहीं होता ना, ठीक है। डाकुओं से महफूज कब होते हैं, जब आप एक मजबूत पनाहगाह में पहुंच जाते हैं, जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं, है ना, तो वहां पे जाने के बाद अब आप डाकुओं से महफूज होते हैं ना, क्योंकि अब पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम है, बाकायदा लॉक एंड गेट के अंदर आप दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। रास्ते में तो ये सब कुछ नहीं होता ना, तो बिल्कुल यही मामला दीन का भी है। जब तक आप रास्ते में रहते हैं ना, आप राहजनों से, डाकुओं से, भाई वहां पे डाकू कौन है, वहां पे ईमान के डाकू है, जो कि आपको वापस खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, आ जाओ वापस हमारी मजलिस के अंदर, आ जाओ वापस हमारी सोबत के अंदर, आ जाओ वापस गाने बजाने की तरफ, आ जाओ वापस जो है वो फिल्में देखने की तरफ, राइट। हमारा काम क्या है कि हम अपने सफर को जारी रखें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना, और इस बात को हमें बताया जा रहा है, तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि दिस इज नॉट द गोल, ये जो जाहिरी दीनदारी हमने अपनाई है, ये हमारा मकसद नहीं है, हमारा जो है वो एंड पॉइंट नहीं है, ये तो एक रास्ते का की एक मंजिल है बस, ठीक है। तो इसी वजह से ये चीज जो है वो हमारे लिए मुश्किल बनती रहती है, लेकिन अगर हम लगे रहे ना तो फिर ये मुश्किल मुश्किल कुछ अरसे के अंदर खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को जो है वो दीन की दावत देना छोड़ देते हैं, आप जो है वो अच्छा अखलाक वाला रवैया रखना छोड़ देते हैं, इसका हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं, लेकिन ये बातें समझने की होती हैं, खाली एक क्लास के अंदर ये सारी बातें समझ में नहीं आती, इनमें लगना पड़ता है, तब जा करके ये चीजें जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। बहरहाल तो कुरान मजीद की एक दूसरी आयत में भी यही है कि, और बड़ी सख्त किस्म की धमकी है इसके अंदर, ठीक है, कि वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन, कि जालिम लोगों के साथ मेल जोल और मैलान ना रखो, मैलान का मतलब होता है उनकी तरफ झुको नहीं, उनकी तरफ माइल ना हो, ठीक है, वरना तुम्हें भी जहन्नुम की आग से पाला पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें भी जहन्नुम की आग से पाला पड़ेगा। अब मैलान होने का मतलब क्या होता है, रुकू मत मत करो उनकी तरफ, ये मतलब होता है मैलान का, झुकना, झुकने का मतलब ये है कि उनकी तरफ खड़े होकर तुम रुकू मत करो, नहीं ये मतलब नहीं होता है इसका, फिजिकली कोई झुकना यहाँ पे मुराद नहीं है, तो फिर कौन सा वाला झुकना मुराद है, अपने दिल की अंदर मैलान रखना, ठीक है, उनकी तरफ की चाहत रखना, उनकी तरफ की जो है वो अच्छा समझना कि अच्छा कितना अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी जो है वो मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, कितना जो है वो कंफर्टेबल उनकी लाइफ है, और के जो चाहते हैं कर लेते हैं, ये है दिल का मेलान रखना, और उसके ऊपर हमें बिल्कुल क्लियर धमकी दी गई है कि ये जो मेलान है ना उनकी तरफ, तो फतह मस्सक, तुम्हें जहन्नुम की आग छू के रहेगी, ठीक है, और जहन्नुम की आग का छूना ऐसा नहीं है जैसे कि मोमबत्ती की आग को छू लिया तो कुछ नहीं होता, ये जहन्नुम की आग की बात हो रही है, मोमबत्ती की आग की बात नहीं हो रही। जब आयत मस्कूरा नाजिल हुई तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनकी मजलिस में जाने की मुतलकन ममानियत रही तो हम मस्जिद हराम में नमाज और तवाफ से भी महरूम हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो हमेशा वहां बैठे रहते हैं,
ठीक है, फिर ब्रैकेट्स में लिखा कि ये वाकया हिजरत और फतेह मक्का से पहले का है। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो जाहिर काफिरों की मजलिसें जो हैं वो मुताफ के अंदर ही जमती थी। तो वो लोग तो हमेशा वहां बैठे रहते हैं और उनका मशगला ही ऐब जोई और बदगोई है। इस पर दूसरी आयत उसके बाद वाली नाजिल हुई कि वमा अलल्लज़ीना यत्तकून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तकून, यानी जो लोग एहतियात रखने वाले हैं वो अगर अपने काम से मस्जिद हराम में जाएं तो उन शरीर लोगों के आमाले बद की उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं, हाँ इतनी बात उनके जिम्मे है कि हक बात उनको पहुंचा दें कि शायद वो उससे नसीहत हासिल करके सही रास्ते पर आ जाए। ठीक है, तो यही मामला हमारा भी होता है कि फैमिली मेंबर्स के साथ हमें जब जाना भी पड़ता है ना, तो एक तो उसमें हम कोई वहां जा करके हराम काम नहीं कर सकते, पहली बात ना कि अब आप वहां पे बेपर्दगी हो रही है फैमिली गैदरिंग के अंदर, तो अब हम भी फैमिली यानी बेपर्दगी शुरू कर दें, ये तो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा काम जो नहीं कर सकते वो क्या है कि बेशक आप वहां जाके बेपर्दगी खुद नहीं कर रहे, लेकिन वहां जो बेपर्दगी हो रही है उसको अच्छा भी समझ रहे हैं, उसकी तरफ जो है वो माशाल्लाह दिल में जो है वो खिंचाव भी पैदा हो रहा है। ठीक है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। ठीक है, क्योंकि इसी को तरकनू, इसी को कहते हैं तरकनू, और इसकी ममानियत अल्लाह का हुक्म ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू। ठीक है, उनके यहाँ जो म्यूजिक हो रही है तो म्यूजिक को जो है वो अच्छा समझना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हराम है, जिस तरह बेपर्दगी हराम है, जिस तरह मौसीकी बजाना हराम है, उसी तरह मौसीकी की तरफ माइल होना भी हराम। ठीक है, तो अब क्या करें? ठीक है, अब वहां पर जाएं। ठीक है, और जब तक अगर मैलान होता वो अपने दिल में महसूस करें फिर वहां से निकलने के। ठीक है, क्योंकि मैलान को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह हम बेपर्दगी करना खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, खुद जिस तरह शराब पीना अफोर्ड नहीं कर सकते, उसी तरह शराब की तरफ या बेपर्दगी की तरफ या मौसीकी की तरफ दिल का मैलान भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उस वक्त छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक तो ये है ना कि भाई छोड़ दें जब मैलान पैदा होना शुरू हो जाए, लेकिन कोई ऐसा भी तो काम होना चाहिए ना, कोई ऐसा भी तो रास्ता होना चाहिए ना कि जिससे कि यू मेक श्योर आप ये बात यकीनी बना सकें कि आपके दिल में वहां पे जाके मैलान पैदा होगा ही नहीं। ठीक क्या मतलब कि अपने दिल की हिफाजत करना। ठीक है, पहले से उसका बंदोबस्त करके जाएं कि जब आप वहां पे जाएं तो ना तो आप खुद गुनाह करना शुरू हो जाए ना गुनाह का मैलान आपके दिल में शुरू हो। हाउ विल यू इंश्योर दैट, ये आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं, इसकी आप कैसे जो है वो यकीन दहानी कर सकते हैं? जी आप बताएं भाई, दिल की हिफाजत करनी है ना, तो हिफाजत जो है वो जब आप डाकुओं को देखेंगे तब आप हिफाजत करना शुरू करेंगे या पहले से कोई हिफाजत का इंतजाम करके जाएंगे? ठीक है, यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि आप पहले से दिल की हिफाजत का इंतजाम कैसे करते हैं कि वहां पे जाकर के आपके दिल में मैलान पैदा हो ही नहीं, पहले से तो यही तो पूछ रहे हैं, पहले से कैसे? देन वी मस्ट नॉट लुक एट द एक्ट ऑफ सिन, आंखें बंद कर लेंगी वहां जाकर के। अल्लाह मुझे देख रहा है, ये सो ही दिल में, ये सोच को दिल में इल्म हासिल करके दुआ करके गुनाह की कराहियत रख कर जाए। दो करने के काम है जिनको आप कर लें या उनमें से कोई पहले से नेक माहौल का हिस्सा बन के रहें, जिक्र करते रहें। उसका एक तरीका है ना, वो है कसरते जिक्र, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र, कसरते जिक्र जिसका कि हुक्म है, ठीक है। तो वो कसरते जिक्र जो है ना, और वो भी कल्बी जिक्र, कल्बी जिक्र भी, ठीक है। यानी ऐसा तो जिक्र हो चाहे जुबान से कर रही हूं लेकिन दिल उसके अंदर शामिल हो, दिल उसके अंदर शामिल, उसको कल्बी जिक्र कहते हैं। इतना कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करना है कि आपका दिल जो है ना वो इम्यून हो जाए, कि वो उस तरफ माइल ही ना हो सके, ठीक है। लेकिन ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। इतना कसरत जिक्र जो है ना, ये आज के जमाने के अंदर बहुत मुश्किल तरीन काम, ये कर नहीं पाता कोई, ठीक है। यानी हम यहां बात कर रहे हैं कि आपको अपने फैमिली गैदरिंग में जाना है और वहां पे जाकर के ना सिर्फ गुनाहों से बचना है बल्कि गुनाहों की तरफ मैलान से भी, दिल के मैलान से भी बचना है। उसका क्या तरीका है? तो उसका एक तरीका है कसरत जिक्र, ठीक है, कसरत जिक्र। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है? मजे में म्यूजिक सुनते थे, माजी में म्यूजिक सुनते थे, वो गाने कभी याद आ जाते हैं, ये भी गुनाह है। नहीं, याद आ जाना गुनाह नहीं है, ठीक है। वो तो पहले जो कर लिया वो गुनाह था, उसको याद आ जाना गुनाह नहीं है क्योंकि वो अब आपके इख्तियार में नहीं होता। गुनाह करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है गाना सुनने का, कि जब आप उससे तौबा कर भी लेते हैं ना, फिर भी आपको जब कभी भी वो सुनाई देगा आपको माजी का पूरा सीन याद आ जाएगा, जहां पे आपने सुना था, कैसे सुना था, क्या हो रहा था उस वक्त, कौन लोग वहां पे मौजूद थे, सब कुछ आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और ये बेइख्तियारी तरीके से याद आएगा, आप जानबूझ के याद नहीं कर रहे, आएगा आपके दिल के अंदर ये सारा का सारा ख्याल, ठीक है। इसी वजह से गुनाह, ये मौसीकी के गुनाह से शुरू से ही बचने का कोशिश करनी चाहिए, या अपने बच सके अपनी औलाद को तो बचाएं, ठीक है, औलाद को बचाने की कोशिश करें, मेहनत करें, क्योंकि वो भी उसी अजियत के शिकार होंगे वरना, जिसका कि आप शिकार हो चुकी हैं। तो याद आ जाना गुनाह नहीं है, लेकिन उस याद के ऊपर लज्जतें लेना ये गुनाह बन जाएगा, ठीक है। खुद ही गुनगुनाना शुरू हो गई, खुद ही जो है वो याद करना शुरू, कितने अच्छे दिन थे, मैं ये सुना करती थी, फिर गुनाह बन जाएगा उसके बाद, फिर ठीक है, या कम से कम गुनाह का जो है वो माइल करने वाली चीज बन जाएगी। अच्छा, पहले से ही उस गुनाह की कराहियत, पहले से ही उस गुनाह की कराहियत दिल में पैदा करें, ताकि सिचुएशन आए तो दिल में दिल मायल ना हो। ये सारी जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये सब जिक्र के अंदर शामिल होता है। ये कसरत जिक्र से आपके दिल के अंदर कराहियत पैदा होती है, और उस कराहियत से फिर ये फायदा होता है कि आप उसकी तरफ मायल नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो कसरत जिक्र में एक्चुअली ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, हत्ता के इल्म हासिल करना ये भी कसरत जिक्र का हिस्सा है, इल्म हासिल करना ये भी कसरत जिक्र का हिस्सा है, ठीक है। क्या मतलब इल्म हासिल करना? अरबी जुबान का इल्म हासिल करना, या जो है वो कौन सा गजबा किस साल में पैदा हुआ था, ओ सॉरी, कौन सा गजबा किस साल में हुआ था, इसका इल्म हासिल करना नहीं, बल्कि कसरत जिक्र में कौन सा वाला इल्म शामिल होता है? सवाब का इल्म और अजाब का इल्म, अल्लाह ताला की मारिफत का इल्म, अल्लाह ताला की अजमत का इल्म, जहन्नुम के हालात का इल्म, ठीक है। ये इंसान के दिल को गुनाह की तरफ माइल होने से रोकता है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ कसरत जिक्र, ठीक है। तो कसरत जिक्र के अंदर ये भी शामिल है, लेकिन एक दूसरा काम भी है, ठीक है, जो कि कसरत जिक्र से पहले भी आप कर सकते हैं। यानी आपको वो कसरत जिक्र की नहीं, दुआ भी कसरत जिक्र के अंदर ही शामिल रखें, इसको उसको अलग नहीं किया करें, दुआ को अलग नहीं किया करें जिक्र से, ठीक है। ये खाम खा की मुश्किल पैदा करनी है, दुआ को अलग कर दिया, जिक्र को अलग कर दिया, तो वो नहीं, दुआ इज पार्ट ऑफ जिक्र, मेक इट पार्ट ऑफ जिक्र, कंसिडर इट पार्ट ऑफ जिक्र, ठीक है। दूसरा जो काम है ना, जो कि आपको वहां पर गुनाहों की तरफ माइल होने से रोकेगा, वो क्या है?
वो है दावत देने का काम, तबलीग का काम, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम, ठीक है? ये वाले काम जब आप करेंगे ना, ठीक है, तो और ये काम पहले से भी करते रहें और कभी ऐसी पोजीशन में फंस जाएं वहां पर भी करें, ऐसी सिचुएशन में जाना हो तो वहां पर भी करें, ठीक है? जितना कर सकती हैं उतना तो करें ना, जिसको कर सकती हैं उसको तो करें ना, दीन की बात शुरू कर दें, बुराई की के नुकसान शुरू कर दें, लोगों से बात करना, लोगों को कहना, ठीक है? तो इसके बड़े फायदे होते हैं। एक तो ये दीन का हिस्सा है, दीन का काम है करने का, ठीक है? और दूसरा ये कि एक तो वो लोग भी जो है ना, वो जो आपके पीछे पड़े हुए हैं ना, वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते रहते, वो बैकफुट पे चले जाएं। जब आप फ्रंट फुट पे जा करके, ठीक है, जब आप आगे बढ़ करके उनको मना करेंगे ना गलत कामों से, तो अब वो जो है ना, वो डिफेंसिव पे जाने में मजबूर हो जाएंगे, या कम से कम जो है वो पीछे जाने पे मजबूर हो जाएंगे, वो आपके पीछे पड़ना छोड़ देंगे। हम दावत का काम करते ही नहीं, इस वजह से हम हमेशा जो है ना वो बैकफुट पे रहते हैं। बैकफुट का मतलब पता है, यानी पीछे रहना, डरपोक इस तरीके से रहना, और लोग हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं, हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं। भाई आप, हम क्यों नहीं चढ़ते लोगों के ऊपर? क्योंकि हम दावत का काम नहीं करते, ठीक है? और कम अज कम इसका फायदा ये होगा कि हमारा अपना दिल जो है ना, वो उस तरफ माइल होने से बच के रहे, ठीक है? तो ये कसरत है जिक्र और दावत का काम, ये दो ऐसे काम होते हैं जो कि आपको महफूज रखते हैं, जो कि आपके दिल की हिफाजत की गारंटी देते हैं, इंश्योर करते हैं। हाउ टू डील विद पीपल हु आर इन फर्स्ट स्टेज, लाइक जस्ट चेंज, जस्ट स्टार्टेड बियर्ड और कुर्ता, बट दे थिंक दैट दे हैव चेंज, दे ट्राई टू एडवाइस और फोर्स। आप उनको पूरा दीन सिखाए ना, पूरा दीन समझाए ना, हकीकत उनके सामने खोले ना, ठीक है? उनको बताएं कि भाई हकीकत क्या है, आप किस चीज को हकीकत कर समझ के बैठे हुए हैं, ये हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत तो वो है, कुछ और है, उसको दलाइल के साथ हम उनके सामने पेश करते रहे, ठीक है? हाउ टू डील विद पीपल, ये डील वाला जो लफ्ज है ना, ये सही नहीं है इसको इस्तेमाल करना, इसलिए कि हम डील का मतलब कुछ और समझ रहे होते हैं, जहाँ क्या होता है उनके साथ काम करने। बहरा आगे इनको भी ठीक हो गया, तो आप वगैरह के अंदर फरमाया कि नहीं, आप वहां पे जाएंगे तो आपके ऊपर, एज लॉन्ग एज आप जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके ऊपर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तीसरी आयत में भी तकरीबन इसी मजमून की मजीद ताकीद इस तरह इशारत फरमाई गई है कि वजर लजीन तखुद्दीन के, इसमें लफ्ज जर वजर से वजरुन से बना है या वजरा से बना है, जिसके मानी है किसी चीज से नाराज होकर के उसको छोड़ देना, ठीक है? देखें बहुत अहम बात है ये कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो हुक्म फरमाते हैं ना, वज़रिल्लज़ीना तख़ज़ूदीनहुम लाइबा वलहवा, कि छोड़ दीजिए उन लोगों को कि जिन्होंने अपने दीन को लाइब व लहव समझ समझाया हो, बनाया हो, उनको छोड़ दीजिए। तो अब उर्दू में तो छोड़ देने का लफ्ज है ना इसका तर्जुमा, लेकिन अरबी का जो लफ्ज है जर, तो जर का जो मतलब है ना, वो है किसी चीज से नाराज होकर के उसको छोड़ देना, ऐसे नहीं छोड़ देना जैसे हम मिसाल के तौर पर आप जब अपने घर वालों को छोड़ करके जो है वो किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, तो वो नाराज होकर तो नहीं छोड़ती ना, वो तो रो रही होती हैं कि अम्मी मैं आपसे कब मिलूंगी, राइट? अम्मी को छोड़ करके जा रही हूँ, अब्बू को छोड़ करके जा रही हूँ, बहनों भाइयों को छोड़ के जा रही हूँ, तो छोड़ के तो जा रही है, लेकिन नाराज होके तो नहीं छोड़ के जा रही ना, मोहब्बत तो वहीं पर है, लेकिन छोड़ना पड़ रहा है किसी वजह से, इसको जर नहीं कहते, ठीक है? इसको जर नहीं कहते हैं, जर तो उस छोड़ने को कहते हैं जो कि नाराज होकर के छोड़ा जाए, ठीक है?
इसी कुरान मजीद के अंदर एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाते हैं, वजरू वाहिरल इस्मे वबातिना, और छोड़ दो वो गुनाह जो तुम जाहिर में करते हो या तुम छुप करके करते हो। यही लफ्ज वजर जो है या जर जो है, यही लफ्ज जो है वो गुनाहों के लिए भी इस्तेमाल, और यही लफ्ज जो है वो गुनाहगारों की कंपनी के लिए भी इस्तेमाल। क्या मतलब? कि नाराज होकर के उसको छोड़ो, चाहे वो गुनाह गुनाह खुद हो या गुनाहगारों की कंपनी हो, सोहबत हो, नाराज होकर के उसको छोड़ो। यानी तुम्हारे दिल के अंदर ये कैफियत होनी चाहिए कि यू आर नॉट प्लीज्ड विद इट, आप उनसे राजी नहीं है, बल्कि आप उसके बारे में दिल में कम से कम कराहियत वाली कैफियत है और उसके साथ उसको छोड़ रहे हैं। ये हमारे परवरदिगार का हमें हुक्म है। ठीक है, हमारी आयत की ये है कि आप उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने अपने दीन को लहव लाभ यानी मशतरा और खेल बना रखा है। इसके दो मानी हो सकते हैं, एक ये कि जो दीन हक यानी इस्लाम उनके लिए भेजा गया है उसको लहव लाभ उन्होंने बना रखा है, उसका इस्तेहजा व तमस्खर करते हैं। दूसरे ये कि उन्होंने असली दीन को छोड़कर अपना दीन और मजहब ही लहव लाभ को बना दिया है। दोनों मानी का हासिल तकरीबन एक ही है। ठीक है, यानी जो असल दीन है नबी अलैहिस्सलाम जो लेकर के आए और सहाबा ने उसके ऊपर अमल किया और आगे पहुंचाया, वो असल दीन है। और एक है कि हमने अपने जमाने में जो दीन बना लिया, जैसे मिसाल के तौर पर हम जहाज में बैठे पाकिस्तान, राइट, मुमलिकत खुदादाद के अंदर जो है वो हम जहाज में बैठे और जो है वो जहाज के अंदर उन्होंने सफर की दुआ सुनाई, रिकॉर्डेड जो होती है, सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, मौसीकी शुरू, राइट। यानी पता नहीं कोई मिली सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे शायद, या एक सेकंड भी शायद नहीं लगा होगा, कि इधर दुआ कुरान मजीद की आयत खत्म हुई, उधर ही जो है मौसीकी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये जो दीन है ना, ये कुरान मजीद की आयत सुनाना और सफर की दुआ पढ़ाना और फिर उसके साथ म्यूजिक, ये लहवो लाभ है, ये दीन को खेल तमाशा बना है। ठीक है, या ये के नारा मार रहे हैं अल्लाह हु अकबर और साथ साथ जो है वो मौसीकी भी चल रही है, राइट, या बेपर्दगी भी चल रही है और नारे भी चल रहे हैं अल्लाह हु अकबर राइट। ये दीन को लहवो लाभ बनाना है, ठीक है, खेल तमाशा बनाना है। सही, तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, इनको छोड़ दो, ऐसे लोगों को छोड़ दो, ऐसी हरकतों को छोड़ दो, दिल में कराहियत के साथ छोड़ो। तो जो आप जैसे इन लोगों की बात कर रही हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर हैं, हाउ टू डील विद देम, टेल देम द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वजर, कुरान की ये आयत उनको बताएं और इस लफ्ज का मतलब उनको बताएं कि गुनाह के साथ जो है ना वो नाराजगी की कैफियत होगी, तब जो है वो नेकी के आमाल जो आपने शुरू किए ना, तब ये अल्लाह के हुक्म पे अमल करना कहलाएगा, वरना ये दोनों चीजें एक साथ साथ हरगिज नहीं चल सकती। ठीक है, बाकी इसके ऊपर बड़ी और तफसील के साथ और बड़े और दलाइल के साथ जो है वो मर्दों की तफसील क्लास के अंदर पिछले बुध को बात हुई थी, वो आप उसकी रिकॉर्डिंग अपने हस्बैंड से अपने बेटे से ले लें अगर वो उस ग्रुप के ऊपर है तो। ठीक है, अल्लाह ताला बात को समझ आने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।